Article 12, text 28. जिज्ञासितात्मा यातहार्थयो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यति अदक्तो भयम् जिज्ञासितात्मा यथार्थयो मुनेर्व्यास सुतादसो हित्वेदं नृप गंगायां यास्यति अद्धकुतो भयम् वन्स ओन सेल्फ एंड बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम वन कैन गेट फ्रीड फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट and enter into the kingdom of fearlessness. This material world is fearfulness. Its prisoners are always fearful, as within a prison house. In the prison house, no one can violate the jail rules and regulations. And violating the rules means another term for extension of prison life. Similarly, we in this material existence are always fearful. This fearfulness is called anxiety. Everyone in the material life, in all species and all varieties of life, is full of anxieties, either by breaking or without breaking the laws of nature. Liberation or mukti means getting relief from these constant anxieties. This is possible only when the anxiety is changed to the devotional service of the Lord. Srimad Bhagavat gives us the chance to change the quality of anxiety from matter to spirit. This is done in the association of a learned philosopher like the self-realized Shukadev Goswami, the great son of Sri Vyasadev. Maharaj Parikshit, after receiving warning of his death, took advantage of this opportunity by association with Shukadev Goswami and achieved the desired result. There is a sort of imitation of this reciting and hearing of Srimad Bhagavatam by professional men, and their foolish audience thinks that they will get free from the clutches of material attachment and attain the life of fearlessness. Such imitative hearing of Srimad Bhagavatam is a caricature only. One should not be misled by such performance of Bhagavatam Saptaha, undertaken by religious greedy fellows to maintain an establishment of material enjoyment. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shala. Iska Hindi Anuvad is prakar hai. व्यासदेव के पुत्र से आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करने के बाद राजा परीक्षित भौतिक आसक्ति को त्याग करके अभय पद को प्राप्त करेंगे. तात्पर्य, भौतिक ज्ञान का अर्थ है कि अपने आप को भूल जाना, और दर्शन शास्त्र का मतलब है अपनी सही पहचान को जानना. बिना आत्म साक्षात्कार के सिर्फ दर्शन शास्त्र समय की बर्बादी है. श्रीमद् भागवत सच्चा ज्ञान है आत्मा का, और भागवत सुनने से व्यक्ति भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अभय के राज्य में प्रवेश कर सकता है. यह भौतिक दुनिया एक भयावह स्थान है. इस दुनिया के कैदी हमेशा डरे हुए रहते हैं, जैसे कैद खाने में कैदी होते हैं. इस कैद खाने में या जेल में कोई व्यक्ति जेल के नियम का भंग नहीं कर सकता, और अगर वो जेल के नियम का भंग करता है तो उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा समय के लिए जेल में रहना पड़ता है. उसी तरह से हमें देखते हैं कि भौतिक अस्तित्व हमेशा भयानक स्थान है. ये इसको चिंता कहते हैं. इस भौतिक दुनिया में सब योनि में सब जीव चिंता में हैं, चाहे वो नियम तोड़ रहे हों या नहीं तोड़ रहे हों. मुक्ति का अर्थ है चिंताओं से मुक्त होना, और वो तब संभव है जब चिंता को भक्तिमय सेवा में परिवर्तित किया जाए. श्रीमद् भागवत हमें अवसर देता है कि कैसे चिंता को भौतिक तत्व से आध्यात्मिक तत्व में परिवर्तित किया जाए. और ये शुकदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव के महान पुत्र हैं, उनके संग में संभव है. महाराज परीक्षित मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद उन्होंने अवसर लिया, उस संघ का, शुकदेव गोस्वामी के संघ का लाभ लिया और वांछित फल को प्राप्त किया. कई बार ये भागवत का श्रवण और कीर्तन की विधि का नकल किया जाता है प्रोफेशनल प्रोफेशनल व्यवसायिक व्यवसायिक व्यक्ति द्वारा, और ये मूर्ख मूर्ख श्रोतागण सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भय हो जाएंगे। लेकिन ऐसा जो भागवत का श्रवण है वो सिर्फ दिखावा है और व्यक्ति को इससे इससे भुलावे में फंसना नहीं चाहिए। ये जो भागवत सप्ताह है वो लोभी लोगों के द्वारा किया जाता है अपनी इंद्रिय तृप्ति को बनाए रखने के लिए। आपसे वैष्णव का आशीर्वाद चाहता हूँ, इसके द्वारा मैं शब्दों के शब्दों को दोहरा सकूँ। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से है, 12वां अध्याय, और अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित का जन्म। महाराज परीक्षित एक महाजन है, ऑफिशियली 12 महाजन के लिस्ट में नहीं भी हों तो भी वो महाजन है। महाजन का एक अर्थ है कि ऐसे महात्मा व्यक्ति जिनका जीवन चरित्र आदर्श हो और जो अपने उदाहरण से दूसरों को सिखा सके, उसको भी महाजन कहा जाए। उस व्यक्ति को भी महाजन कहा जाता है। भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो उसमें से जो पहला अंग है श्रवण, उसके आदर्श उदाहरण परीक्षित महाराज हैं। परीक्षित महाराज शुरुआत से ही बहुत ही विशेष हैं। माँ के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने उनका वध करने का प्रयास किया तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, और बचपन से ही परीक्षित महाराज का रुचि भगवान कृष्ण के प्रति था। जब भगवान के दिव्य इंतजाम से उनको क्रोध आया शमिक ऋषि के ऊपर और उनके गले में मृत सांप डाला, तब श्रृंगी ऋषि के शाप से निश्चय हुआ कि वे अब 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। और आज के श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब उनको समाचार मिलता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो उनका क्या रिएक्शन होता है। यहाँ बताया गया कि वे सब कुछ छोड़ देंगे और गंगा के किनारे जाकर व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी के मुख कमलों से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करेंगे और भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले बद्रीनाथ से लौटा और हरिद्वार और दिल्ली के बीच में ये स्थान है जिसका वर्णन आज के श्लोक में किया गया है, जहाँ पर परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के चरण कमल में बैठकर भागवत सुन रहे थे। उसको शुकतार कहते हैं। अभी भी वो वटवृक्ष है, बैनियन ट्री, जिसके नीचे अनेक संतों के साथ महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी के मुख कमलों से हरिकथामृत का पान करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत के श्रवण से व्यक्ति निर्भय बन सकता है। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है, भय और चिंता, शुरू से न चाहते हुए भी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ये बहुत प्रयास करते हैं लोगों को काउंसलिंग करने का कि आप चिंता मत करो। आपको पता होगा 21वीं सदी में एक सबसे प्रमुख बीमारी है मेंटल डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, जिसमें एक चिंता के कारण अधिकांश बीमारी होते हैं। और हालांकि मेडिकल साइंस ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मदद करें, लेकिन वास्तव में वो मदद नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है ये कुंठा है। जो वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे अपने प्रयास से। इस्कॉन के डिवोटी सच्चे मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत को सुनने से ही व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो सकता है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब तक भय रहता है। जब तक हम ये सोचते हैं कि कृष्ण से अलग कुछ है तब तक भय रहेगा। भय की दूरी तब होती है जब हम पद पद पर कण कण में अणु में और सबके हृदय में कृष्ण को देखते हैं। उस स्थिति में व्यक्ति निर्भय हो सकता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। गोविंददास कविराज का जो भजन है वो सब साइकेट्रिस्ट को समझना चाहिए और उनको अपने पेशेंट्स को सिखाना चाहिए। सो सिंपल। एक्चुअली नाक पकड़ना यहाँ से हो सकता है लेकिन लोगों को आदत हो जाती है ऐसे घूम के पकड़ने की। दुनिया के सबसे जटिल समस्या का हल बहुत सरल होता है। एक समस्या दुनिया में धन धन प्राप्त करने की इच्छा। कितने दुनिया में प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति धन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और अवैध तरीकों से धोखे से धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसके साथ फिर चिंताएं बढ़ती हैं। और वो जो धोखे से धन प्राप्त कर रहे हैं उनको रोकने के लिए दूसरे लोगों को चिंता करनी पड़ती है, जो इनकम टैक्स वाले लोग और करप्शन रोकने के लिए। यानी अगर सबको पता चल जाए कि सुख और दुख पहले से निर्धारित है बस फिर कोई एंग्जाइटी नहीं रहे। सुख और दुख पहले से निर्धारित है। चिंता का एक प्रमुख कारण है ये भूल जाना कि एक विधाता है, एक प्रोविडेंस है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे सुख और दुख प्रकृति के नियम के अनुसार हैं और वो कोई नहीं बदल सकता सिवाय कृष्ण के, तो फिर चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता। ऑफकोर्स अगर ये बात सबका समझ में आ जाए तो सब साइकेट्रिस्ट आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट है, एक्चुअली इल्यूशन ही भ्रम ही चिंताओं का कारण है। ज्ञान सब चिंताओं से मुक्त कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं हियरिंग श्रीमद् भागवतम कैन फ्री वन फ्रॉम एंग्जाइटी। तो आप अलग अलग वे से प्रीचिंग कर सकते हैं, ये भी एक हो सकता है। यू कैन ओपन अ काउंसलिंग सेंटर कि चिंताओं के पेशेंट्स यहाँ पर आओ और राधेश्याम प्रभु से भागवतम सुनो, ऑल एंग्जाइटीज विल गो। क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, ये सुख और दुख ये मेरे से संबंधित नहीं है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है तो फियरलेस हो जाता है और साथ साथ न केवल वो निर्भय हो जाता है, वो सब भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। दुख का कारण है भौतिक आसक्ति। आत्मा के लिए अपने आप को शरीर मानना ये बहुत विचित्र अवस्था है, ये बहुत ही एक एम्बारेसिंग सिचुएशन है। जैसे किसी को ड्रामा में कोई अजीब रोल दिया जाए, जो कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति को बंदर बनाया जाए ड्रामा में, तो बड़ा अजीब लगेगा। और समझो इतना व्यस्त हो जाए ड्रामा में कि वो भूल जाए कि मैं बंदर नहीं हूँ और अपने आप को बंदर ही समझ रहा है, और फिर उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बंदर हो गया लेकिन बंदर है ही नहीं। ऐसे हम सबको दुख हो रहा है या चिंताएं हो रही हैं ये शरीर के कारण, लेकिन हमारा स्वभाव अलग ही है। हमको इस देह से कुछ लेना देना है ही नहीं, जो कि पांच तत्वों का बना हुआ दुख का स्रोत है और इसमें से अनेक सुगंधित पदार्थ नहीं लेकिन दुर्गंध वाले पदार्थ निकलते हैं। अपने आप को उसे आइडेंटिफाई करना ये दुख का कारण है। इसलिए जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भगवद गीता को ध्यान से श्रवण करता है उसको समझ में आ जाता है असंगोयम पुरुष, कि मेरा इस शरीर से कोई संबंध है ही नहीं, ये एक फॉरेन सिचुएशन है, मैं कहीं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना। जब तक हम जेल में रहेंगे तब तक चिंताएं रहेंगी, लेकिन जब हम जेल से बाहर निकलते हैं तब चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया इस भौतिक दुनिया में आप चाहे नियम पालन करो या नहीं पालन करो, चिंताएं हमेशा रहेंगे। लेकिन जब आप भौतिक दुनिया से बाहर निकलते हो तब आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। और भौतिक दुनिया से बाहर निकलने का अर्थ है वापस कृष्ण के धाम में, फिर से कृष्ण के धाम में प्रवेश करना। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति सिखाने के लिए आए हैं वो भक्ति है वैराग्य से युक्त भक्ति, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिस्तम अहम प्रपद्य। ये श्लोक की रचना श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने की थी। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के महानता को देखा और उनका हृदय परिवर्तित हो गया, तब उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की जिसको सार्वभौम शतक कहते हैं। तो उसमें से ये एक श्लोक है। आज मैं उस लीला का संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूँगा चैतन्य चरितमृत के आधार पर, कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके महानता को पहचान से पाते हैं। शुरुआत इस प्रकार से होती है कि संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वो रेमुना पहुंचते हैं जहाँ पर खीरची और गोपीनाथ के दर्शन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुख से वो कथा सुनी थी कि कैसे भगवान कृष्ण ने गोपीनाथ ने खीर चुराई थी माधवेंद्रपुरी के लिए। ये कथा चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को बताते हैं और तत्पश्चात पुजारी स्वयं भगवान के पार्षदों के लिए 12 मटके खीर के लिए कराते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ और 4 भक्त होते हैं। महाप्रभु 5 मटके खीर के लेते हैं और 7 मटके वापस दे देते हैं। वो दिखाते हैं कैसे डिवोटी को अपना कोटा लेना चाहिए। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु फिर भुवनेश्वर पहुँचते हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव का दर्शन करते हैं। वो कथा स्कंद पुराण का वर्णन किया गया है जहाँ पर भगवान शिव जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध होता है और अंत में भगवान कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। रास्ते में एक स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु भार्गी नदी में स्नान करने जाते हैं और अपना दंड वो नित्यानंद प्रभु को सौंपते हैं। नित्यानंद प्रभु दंड की ओर देखकर सोचते हैं कि मेरे हृदय के स्वामी शचिनंदन गौरंग महाप्रभु हैं, जिनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ वो आपको धारण करें, ये ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर वो दंड को तोड़ देते हैं। और एक और एक्सप्लेनेशन भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि मायावादी सन्यासी एक दंड लेते हैं, जीव और भगवान एक, लेकिन वैष्णव त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु उस एक दंड को 3 भाग में विभाजित कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मन शरीर और वचन सब भगवान की सेवा में अर्पण कर। और फिर वो सोचते हैं कि महाप्रभु तो परमहंस से भी ऊपर हैं। संन्यास के 4 स्टेजेस होते हैं, कुटीचक बहुदक परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो परमहंस अवस्था में कोई दंड उठाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो 3 दंडे के टुकड़ों को नदी में बहा देते हैं। महाप्रभु कपोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद में नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं कि मेरा दंड कहाँ है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वो दंड आप एक्सटेसी में थे, आप कीर्तन में, आप मेरे ऊपर गिरे, मैं दंडे के ऊपर गिरा, पता नहीं वो दंड कहाँ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ट्रांसेंडेंटली एंग्री दिव्य रूप से क्रोध प्रकट करते हैं और वो कहते हैं अब संन्यास लेने के बाद मेरी एकमात्र संपत्ति ये दंड थी और अब ये दंड भी आपने फेंक दिया, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, या तो आप आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा। चैतन्य नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप आगे जाइए, हमारे से अपराध हुए। उसके बाद महाप्रभु तेजी से जगन्नाथ की तरफ दौड़ने लगते हैं, दूर से चक्र को देखकर ही बेहोश हो जाते हैं और फिर उठकर दौड़ते हैं। और जब वो जगन्नाथ मंदिर के पास में पहुँचते हैं तो तेजी से दौड़ते हैं भगवान जगन्नाथ को गले लगाने के लिए, लेकिन जैसे वो पास में पहुंचते हैं वो जमीन पर गिर पड़ते हैं एक्सटेसी में, बेहोश हो जाते हैं। आसपास के वॉचमैन चौकीदार जो सेंट्रीज होते हैं वो लकड़ी लेकर महाप्रभु को मारने जाते थे, तो कौन ये पागल व्यक्ति है जो भगवान के सामने गिर गया है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो वहाँ के हेड प्रीस्ट थे उनको रोक देते हैं, पास में पहुँचते हैं वो तो देखते हैं कि ये कौन है, जिस भगवान के रूप को देखकर उनकी सुंदरता को देखकर वो समझ जाते हैं कि बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, और देखते हैं उनके शरीर में कोई विशेष लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अब सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगते हैं भगवान जगन्नाथ को भोग ऑफरिंग करने का समय आया है, अभी मंदिर के जस्ट सामने अल्टर के सामने भगवान गिरे पड़े हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक कुछ शिष्यों को लिया और महाप्रभु को उठाकर अपने घर में ले गए, और उन्हें देखा घर में ले जाकर कि उनका एब्डोमेन उनका पेट में कुछ हलचल नहीं हो रही, कुछ मूवमेंट नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं हो रहा। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत चिंतित हो गए ये देखकर, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि ये व्यक्ति जीवित हैं उन्होंने छोटा सा कॉटन कपास का एक टुकड़ा लिया और महाप्रभु के नाक के पास रखा, और जब धीरे 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 वो हिलने लगा तो समझ गए अभी भी वह जीवित हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि महापुरुष है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके लक्षणों से मुझे लग रहा है कि ये कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य मन ही मन सोच रहे थे कि ये जो अधिरूढ़ भाव, इसका वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं, भाव अधिरूढ़ भाव महाभाव, ये अधिरूढ़ भाव के लक्षण जो दिखाई पड़ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु में वो साधारण नहीं है, ये मानव में कैसे प्रकट हो सकते हैं। इस समय वो सोच रहे थे उधर नित्यानंद जगदानंद गोविंद और मुकुंद जो पीछे रह गए थे वो भी दौड़ते वहाँ पर पहुँचे, जगन्नाथ मंदिर के पास पहुँचे सिंह द्वार पर, और उन्होंने पूछा कि आपने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो किसी ने बताया कि वो यहीं पर थे अभी और भगवान जगन्नाथ के दर्शन से बेहोश हो गए थे, अब वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं। और उस समय गोपीनाथ आचार्य वहाँ पर आए, गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ थे, और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के माता शची माता के पिता का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, और नीलांबर चक्रवर्ती और महेश विशारद ये दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, और महेश विशारद के दो पुत्र थे, एक का नाम था मधुसूदन वचस्पति और दूसरे का नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, और उनके सन इन लॉ जो थे उनका नाम गोपीनाथ आचार्य था। सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन के पति गोपीनाथ आचार्य थे, तो गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे, और जब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ पुरी में आए हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त से गले मिलने लगे, और मुकुंद दत्त ने उनको बताया कि हमने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, क्या आप बता सकते हो हम उनको कहाँ पर मिल सकते हैं। और गोपीनाथ आचार्य उनको सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में लेकर गए। जब सारे भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य के पास भगवान को देखा, आंखें बंद बेसुध अवस्था, उनके मन में दुख जागृत हुआ, लेकिन साथ साथ वो प्रसन्न थे भगवान के दर्शन करके। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने पुत्र चंदनेश्वर को बताया कि तुम इन भक्तों के साथ गोपीनाथ आचार्य के साथ जाओ, और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराओ इन भक्तों को। नित्यानंद, जगदानंद, गोविंद और दामोदर, ये सब भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे। और उस समय भगवान जगन्नाथ के एक पुजारी जगन्नाथ को अर्पण की हुई माला नित्यानंद प्रभु को अर्पण करने लगे, और फिर वो लौट कर आए। महाप्रभु अभी भी बेसुध अवस्था में थे। उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, तृतीया प्रभु रहिल प्रभु र चेतन। तब भक्त उच्च स्वर में कृष्ण नाम पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब और जोर से गाने लगे तब उसके बाद श्री चेतना महाप्रभु को भारी चेतना आई। जैसे महाप्रभु उठे उनके हाथ ऊपर करके गाने लगे, हरी हरी। लॉर्ड चैतन्य गॉट अप लाउडली चैंटेड हरी हरी। सार्वम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। उनको चिंता थी कहीं महाप्रभु के प्राण नहीं चले गए। महाप्रभु को वापस होश में देखकर तुरंत उनके चरणों की धूल अपने सिर पे ली और बोले, आज आप सब समुद्र में जाकर स्नान करिए और लौट कर आने के बाद महाप्रसाद ग्रहण करिए। मैं स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रसाद आपके लिए ले आऊँगा और आप ग्रहण करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ समुद्र स्नान के लिए गए और वे लौट कर आए। फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए बैठे। जस्ट जगन्नाथ मंदिर में अभी भी भगवान जगन्नाथ को भोग लगा था। जब महाप्रभु बेहोश हुए थे उसमें भोग लगा था, वही महाप्रसाद सार्वम भट्टाचार्य लेकर आए। स्पेशल राइस, फर्स्ट क्लास सब्जी, और यहाँ पर लिखा गया गोल्डन प्लेट्स में, बहुत सुंदर प्लेट्स में। सार्वम भट्टाचार्य अपने हाथों से प्रसाद वितरित कर रहे थे और महाप्रभु बोले, मैं सन्यासी हूँ, मुझे सिर्फ कुछ लाफरा व्यंजन दो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लाफरा व्यंजन ये बंगाली आइटम है जिसमें कुछ वेजिटेबल्स को बॉइल करके उसके ऊपर छौंस लगाया जाता है, थोड़ा जीरा, राई और उसके ऊपर ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और जो बाकी सब आइटम्स है खीर और मालपुआ वो सब दूसरे भक्तों को बांट दो और बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप मुझे दो। जनरली हमारा अपोजिट होता है लेकिन महाप्रभु बहुत ही वैराग्य प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन सार्वम भट्टाचार्य उनके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। सार्वम भट्टाचार्य बोले, हाथ जोड़ के बोले, जगन्नाथ कैचे करियाचे भोजन, आज सब महाप्रसाद करे आस्वादन। जस्ट टेक द प्रसाद जस्ट द वे लॉर्ड जगन्नाथ एक्सेप्टेड। जगन्नाथ ने जैसे लिया वैसे लो, ये मत बोलो मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, स्वीट्स भी लीजिए। सबको बिठा कर न केवल लाफरा व्यंजन बल्कि पीठ, कंडेंस्ड मिल्क और वो सब अपने हाथों से सर्व करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्तों की परमिशन लेकर सार्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के पास गए और सार्वम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और कहा, नमो नारायण। नमो नारायण ये पासवर्ड है मायावादियों का एनीबडी से नमो नारायण मतलब मायावादी जनरली। और महाप्रभु ने जवाब दिया, कृष्णेर मतीर अस्तु, आपका मन कृष्ण में लगा रहे। प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि इट इज एटिकेट अमंग सन्यासीज टू मायावादी सन्यासी टू से ओम नमो नारायण, इट इज यूज्ड बाय मायावादी सन्यासीज। मायावादी सन्यासीज दे थिंक देमसेल्व्स टू बी नारायण। अ सन्यासी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, नॉट शुड ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी इक्वल टू नारायण। एक्चुअली सन्यासी को यह सोचना नहीं चाहिए मैं भगवान के बराबर हूँ। सर्व भट्टाचार्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सन्यासी। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज, इसी टॉपिक से रिलेटेड चैतन्य भागवत से बताऊँगा जो चैतन्य चरितामृत में नहीं बताया है। सार्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बताने लगते हैं कि आपने इतनी छोटी उम्र में सन्यास क्यों ले लिया, ये कलयुग है, आप सिर्फ 24 वर्ष के हैं, माया बहुत स्ट्रांग है उनको पता नहीं था मामे भैया प्रपद्यंत आपने सन्यास क्यों ले लिया। धर्मटाचार्य प्रीचिंग करने लगे, जैसे ही व्यक्ति संन्यास लेता है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाती, दैट इज द एंड, क्योंकि वो सोचने लगता है कि मैं आदरणीय हूँ, मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि मैं दूसरों को आदर दूँ। अमानी न मान देना नहीं, मानी अमान देना हो जाता। संन्यास लेने से व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं सन्यासी हो गया, इसे एटिकेट है, कोई आपको प्रणाम करे आप वापस प्रणाम करें, लेकिन सन्यासी के लिए कंपलसरी नहीं है। तो संन्यास लेते ही थर्म भट्टाचार्य बोलते हैं व्यक्ति की आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। ऑफकोर्स अगर कोई व्यक्ति उस तरह से संन्यास लेता है जो महाप्रभु ने सिखाया है, महाप्रभु का संन्यास मंत्र है त्रिनादपि सुनिच्छिन्न। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, मैंने संन्यास ले लिया है, व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, तो महाप्रभु उनको बताते हैं, पहले बहुत सी चीज़, भाला न खाई भाला न पर, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, लेकिन लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न अमानी न मान दे न कीर्तन्य सत। ये तरीका है संन्यास भाव को मेंटेन करने का। सार्वम भट्टाचार्य कहते हैं उनसे कि मैं आपको उपदेश करूँगा, और 7 दिन तक वो उपदेश करते हैं उनको। ये घटना का वर्णन बाद में किया गया। इधर गोपीनाथ आचार्य जो सार्वम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ होते हैं, सार्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं कि आप तो चैतन्य महाप्रभु को पहले से जानते हो नवदीप से, क्या आप उनके विषय में मुझे कुछ बता सकते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, गोपीनाथ कोहे नवद्वीप घर जगन्नाथ नाम पदवी मिश्रा पुरंदर। वे बताते हैं कि जगन्नाथ मिश्र नाम के एक व्यक्ति हैं जो नवद्वीप के वासी हैं। विश्वंबर नाम इहार तारा इहार पुत्र, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वंबर, और ये विश्वंबर जो हैं ये जगन्नाथ मिश्र के ही पुत्र हैं, ये नीलांबर चक्रवर्ती के ग्रैंडसन है। मैंने आपको पहले बताया था कि नीलांबर चक्रवर्ती और सार्वम भट्टाचार्य के पिता महिष विशारद, ये दोनों क्लासमेट्स थे। तो भट्टाचार्य सुनते ही बोले, नीलांबर चक्रवर्ती मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे पिताजी के क्लास में ही पढ़ते थे, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिता के द्वारा बहुत आदर दिया जाता था उनको, इसलिए मैं जगन्नाथ मिश्र और नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ। सार्वम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे, आप मेरे लिए पूज्य हो, आप सन्यासी भी हो, और एक गृहस्थ का कर्तव्य है सन्यासी की सेवा करना, इसलिए मैं आपका पर्सनल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जैसे ही महाप्रभु ने यह सुना वो कहने लगे, विष्णु विष्णु ये आप क्या बोल रहे हो, आप तो वेदांत के शिक्षक हो, आप पूरे जगत को सिखाने वाले हो, और आप कई प्रकार के सन्यासी को कल्याण करने वाले हो, आप मेरे को उपदेश करिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मेरे गुरु के तुल्य हो, मैं आपका संग करने के लिए यहाँ पर आया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और आप मेरा आदर करोगे तो मैं कैसे आपके साथ वार्तालाप कर सकता हूँ। आज मुझे आपने बचाया, जगन्नाथ मंदिर से आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। सार्वम भट्टाचार्य ने जवाब दिया, अकेले तुम्ही न जाह दर्शन, आप भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए अकेले मत जाना, अमारा संगे जाइबे किंवा अमारा लोक संगे जाए, या तो मेरे साथ जाना या मैं आपको एक व्यक्ति दूंगा उसके साथ आप दर्शन के लिए जाना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, प्रभु कहे मंदिर भीतर न जाइब, मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा ही नहीं, गरुड़ स्तंभ के पास ही रहूंगा और पीछे से ही दर्शन करूंगा। इसके कई कारण भी हैं, श्री भक्तिचरण ठाकुर बताते हैं, भक्तिचरण ठाकुर भी कई बार गरुड़ जी के पीछे बैठकर खड़े रहकर ही दर्शन करते थे। तो किसी ने पूछा उनसे, तो बता रहे थे गरुड़ जी भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान जगन्नाथ गरुड़ जी की ओर देखेंगे तो मेरी ओर भी दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि से कि एक शुद्ध वैष्णव के एसोसिएशन से ये भगवान की कृपा मिलेगी, अगर हम एक शुद्ध भक्त से कनेक्टेड हैं तो हम कृष्ण से कनेक्टेड हैं। सार्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से कहने लगे, आप गोस्वामी जी को ले जाओ जगन्नाथ के दर्शन कराने, और मेरे मैटरनल अंकल जो मेरे मामा हैं उनके पास एक बहुत सुंदर रहने की जगह है, वो शांत भी है और मंदिर के पास में है, आप वहीं पर उनका निवास स्थान दो। गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पर लेकर गए और उनको बताया कहाँ पर पानी रखा है, कहाँ पर मटके हैं स्नान के लिए, सब इंतज़ाम किया। और अगले दिन सवेरे चैतन्य महाप्रभु को सुबह मंगल आरती के लिए जगन्नाथ मंदिर ले गए। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को सार्वम भट्टाचार्य के घर में ले गए। सार्वम भट्टाचार्य मुकुंद दत्त से कहने लगे कि ये सन्यासी तुम्हारे साथ आए हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, ये बहुत ही नम्र सन्यासी हैं और दिखने में बहुत सुंदर हैं, उनको देखते ही मेरे मन में एक प्रेम जागृत हो रहा है उनके प्रति। क्यों बोल रहे हैं नम्रता? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना नाम वैसे ही रखा जैसे ब्रह्मचारी का नाम होता है। जनरली सन्यासी को टाइटल दिया जाता है पूरी या तीर्थ, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु टुक सन्यास ही रिटेन द ब्रह्मचारी नेम, ब्रह्मचारी नाम ही बनाए रखा। उन्होंने केशव भारती से सन्यास लिया और भारतीय संप्रदाय में जब ब्रह्मचारियों का नाम चैतन्य होता है तो सन्यास लेने के बाद भी उन्होंने सन्यास नाम नहीं रखा लेकिन ब्रह्मचारी जैसा ही नाम रखा। ये सार्वम भट्टाचार्य कहने लगे बहुत नम्र हैं, आप मुझे बताइए किस संप्रदाय से हैं। गोपीनाथ आचार्य बताने लगे इनके गुरु हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, सॉरी श्री कृष्ण केशव भारती। भारती, ये भारती जो है ये तो श्री कृष्ण नाम बहुत अच्छा है लेकिन भारती सेकंड क्लास है, मैं इनको अपग्रेड करूँगा फर्स्ट क्लास सन्यासी। गोपीनाथ आचार्य बताने लगे चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, उनका आवश्यकता नहीं है, देर इज नो नीड फॉर हिम टू एक्सेप्ट सन्यास फ्रॉम सुपीरियर संप्रदाय, फिर से सुपीरियर संप्रदाय सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। और भट्टाचार्य कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु अपनी नौजवान अवस्था में हैं, कैसे वो सन्यास के व्रत को धारण करेंगे, मैं उनको उपदेश करूँगा वेदांत सूत्र के ऊपर, और अगर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हो तो मैं उनको फिर से सैफरन वस्त्र प्रदान करूंगा और उनको और ऊंचे संप्रदाय में ले जाऊंगा। तो गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त और सारे भक्त ने सिर पे हाथ रख के सोच रहे थे क्या बोल रहे हैं कि भगवान को और अपग्रेड कर रहे हैं, सुप्रीम लॉर्ड को और श्रेष्ठ बना रहे हैं। माय डियर भट्टाचार्य, यू डू नॉट नो द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ऑल द सिम्पटम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर फाउंड इन हिम टू द हाईएस्ट डिग्री, सब कुछ भगवान चैतन्य महाप्रभु में, और आप बोल रहे हैं कि आप उनको और ऊंचा बनाओगे, ही द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दोज हु आर इग्नोरेंट फाइंड द कंक्लूजन ऑफ नॉलेजेबल मैन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप अज्ञानी हो, आप मूर्ख हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो सार्वम भट्टाचार्य के शिष्य भी थे, उनको अच्छा नहीं लगा, समझो शिष्यों के सामने गुरु जी को कोई मूर्ख बोले, कोई प्रीचिंग लेक्चर दे रहा हो उसके सामने किसी की इंसल्ट की जाए, सब डिसाइपल्स कंप्लेन करने लगे, वॉट एविडेंस डू यू कंक्लूड, आपके पास सबूत क्या है? गोपीनाथ आचार्य बोले शास्त्र, शास्त्र सबूत है, और उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों से सबूत बताया। एक्चुअली गोपीनाथ आचार्य के कहने पर भी सार्वम भट्टाचार्य के शिष्य बोले कि हमें तर्क से जानना है, हमको हाइपोथेसिस से बताइए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है ये कैसे सिद्ध होता है, लॉजिकल हाइपोथेसिस बताइए। गोपीनाथ आचार्य बोले कि भगवान को हाइपोथेसिस से तर्क से नहीं जाना जा सकता, भगवान को जानने का एक ही तरीका है और वो है कृपा, वन कैन नो द लॉर्ड ओनली बाय हिज मर्सी, अनुमान से नहीं, प्रमाण से नहीं, कृपा बिना ईश्वरेर ना ही अन्य जानी। जैसे हम देखते हैं जो साउथ इंडियन ब्राह्मण श्रीरंग में भगवद गीता पढ़ रहे थे उन्होंने पहचान लिया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और बाकी जो स्वयं सो मंत्र बोल रहे थे वो नहीं पहचान सके। तो गोपीनाथ आचार्य कहने लगे कि जिसको थोड़ी सी भी कृपा मिल जाए भगवान की वो भगवान को जान सकते। भागवत में दशम स्कंद में एक श्लोक है, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशा अनुग्रह एव ही जानाति तत्वम भगवान महिमना नचान्य एकोपि चिरम विचिन्वा। अगर किसी को थोड़ी भी कृपा मिल जाए तो भगवान के तत्व को समझ सकता है, नहीं तो वो नहीं समझ सकता। गोपीनाथ आचार्य सारमठाचार्य को बोलने लगे, आप बड़े विद्वान हो, इतने सारे आपके शिष्य हैं, आपके बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा स्कॉलर नहीं है, लेकिन तुमको थोड़ी सी भी दया नहीं मिली। हरि बोल, कितना स्ट्रांग सेंटेंस है, नहीं? आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, बट यू डू नॉट हैव इवन अ पिंच ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी, सो यू कैनॉट अंडरस्टैंड। इस कथा से सिद्ध होता है कि विद्वता और ज्ञान और धन ये भक्ति में आवश्यक नहीं है, सिर्फ कृपा। जब सर्वभट्टाचार्य को बाद में कृपा मिलती है तो वो भी भगवान को पहचान पाती। शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है। सर्वभट्टाचार्य ने फिर से प्रश्न पूछा, आप मुझे बोल रहे हो मुझे कृपा नहीं मिली, आपको कृपा मिली है? What is the proof that you have received mercy? Gopinath Acharya replied, knowledge of the summum bonum is evidence of the mercy of the Supreme Lord. भगवान का ज्ञान मुझे पता चल रहा है, यही प्रूफ है कि मुझे कृपा मिली है। और आपने स्वयं देखा चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे थे, और ये सब देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे आप, इसका मतलब आप भ्रम में हो, आप बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में हो। और सार्वम भट्टाचार्य ने जब सुना तो बोले, वी आर जस्ट हैविंग फ्रेंडली डिस्कशन, डोंट गेट एंग्री, हम खाली दोस्त के रूप में चर्चा कर रहे हैं, मैं शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। हम मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महान भक्त हैं, लेकिन विष्णु के अवतार कहाँ हैं? कलयुग में भगवान विष्णु का कोई अवतार होता ही नहीं है, भगवान का एक नाम है त्रियुगी। भगवान नरसिंहदेव के सामने जब प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, वो बोलते हैं छन्नौ कलौ यद अभवस त्रियुग, त्रियुगी है, सिर्फ सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापर युग में आते हैं। गोपीनाथ आचार्य मुस्कुराकर बोले, आप सारे शास्त्रों को जानने वाले हो, आपने भागवत पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है? भागवत और महाभारत में डायरेक्टली बताया गया कि भगवान का छन्न अवतार है, वही श्लोक जो आप बोल रहे त्रियुगी, उसी में पहला शब्द है छन्न, हिडन इनकारनेशन है। कलयुग में जो भगवान के अवतार हैं वो लीला अवतार नहीं है, लीला अवतार सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापर युग में है, इसीलिए ये त्रियुगी कहा गया है। इस तरह बहुत देर तक उनमें डिस्कशन चलता है, और तब वो भागवत के 11वें स्कंद से बताते हैं कि कैसे भगवान का अवतार है, कृष्णम वर्णम तुषा कृष्ण संगोपांगाश्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध दशा। भगवान किस अवतार का वर्णन, और महाभारत से प्रूफ है, कौन सा श्लोक है महाभारत से? सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरंगश्चिंदनागदो संन्यास कृच्छमशाम। और फिर सब करने के बाद बोलते हैं, तुम्हारा आगे एक अथार नाही प्रयोजन, शास्त्र उशर भूमि ते जे न बीजेर रोपण। सब बता के बोलते हैं, मुझे मालूम है बोलते रहा हूँ लेकिन कोई पेनिट्रेट नहीं होने वाला, आपको सिखाना ऐसे है जैसे बंजर भूमि में कोई नापिक भूमि में बीज डालना है, अगर ग्राउंड फर्टाइल नहीं है तो उसमें आप कितना बीज डालो, आप पूरा वाटर पंप कर दो डैम का, कोई उगने वाला नहीं है। सॉरी, जब भगवान आप पे प्रसन्न होंगे तब आप समझ पाओगे। तो इस तरह से बहुत देर तक चर्चा होती है, और उसके बाद सर्वम भट्टाचार्य हालांकि बहुत ड्राई फिलोसोफर होते हैं, लेकिन वो महाप्रभु की सेवा करते हैं और गोपीनाथ आचार्य से उनका संबंध होता है, इसीलिए इसका फल ये होता है कि वे दोनों जब मैं जस्ट ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, तो इसका फल ये होता है क्योंकि उनको कृपा मिली होती है सार्वम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य के, एक भक्त से रिलेशन होने के कारण भगवान उन पर कृपा करते हैं, नहीं तो सार्वम भट्टाचार्य का कोई आशा नहीं होती। जब हम उनसे संबंधित होते हैं जिनको भगवान की कृपा मिली है, तो उस चेन से उस श्रृंखला से हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। सार्वम भट्टाचार्य बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य को कि आप जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, और मेरी तरफ से बोलो उनको कि जगन्नाथ प्रसाद स्वीकार करें और मेरे से बातचीत करें। सार्वम भट्टाचार्य को छोड़कर गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त से बात करने लगे, और बहुत दुखी थे कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पा रहे। एक विद्वान होने के कारण उनको भागवत और महाभारत से समझना चाहिए था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास हो गए और कहने लगे कि सार्वम भट्टाचार्य आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। महाप्रभु मुस्कुरा कर कहने लगे आमी प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह, भट्टाचार्य मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, वो मेरे पिता के समान है और वात्सल्य रस में वो मेरे संन्यास के जो वाउज हैं उसको मेंटेन करना चाहते हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सार्वम भट्टाचार्य दोनों जगन्नाथ मंदिर में गए और सार्वम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं नीचे बैठे और भट्टाचार्य बोले देखो आपने संन्यास लिया है, पहला ड्यूटी है सन्यासी का वेदांत श्रवण, ये फर्स्ट ड्यूटी है। विदाउट हेजिटेशन यू शुड स्टडी वेदांत फिलॉसफी विद फ्रॉम अ सुपीरियर पर्सन, श्रेष्ठ व्यक्ति से। और कौन है श्रेष्ठ व्यक्ति? हम मेरे से आप ज्ञान ग्रहण करो, वह ट्रांसेंडेंटल है नहीं वो ऊंचे आसन पर बिठा रहे हैं, इमेजिन जो ऑडियंस ऊपर बैठे हैं स्पीकर नीचे है, आपको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते हैं एंड आई एम योर गुरु, दैट वॉज एक्सटेंड ऑफ सार्वम भट्टाचार्य रियलाइजेशन। सार्वम भट्टाचार्य बोले तो महाप्रभु बोले यस 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 यू आर वेरी मर्सीफुल टू मी, आई विल ओबे योर ऑर्डर, आप उपदेश करिए। तो 7 दिन तक उपदेश करते रहे और महाप्रभु बिल्कुल शांत बैठे रहे। 7 दिन होने के बाद 8वें दिन एता दिना तुम्ही वेदांत श्रवण करीला भाला मंद नहीं कह इतने दिन आपने वेदांत सुना भाला मंद, यू लाइक इट और डू नॉट लाइक इट, बुझी कि ना बुझी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? महाप्रभु बोले मूर्ख आमी नहीं अध्यापन, मैं तो मूर्ख हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा आज्ञाते मात्र कराए श्रवण, आप आज्ञा दे रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके आपने बताया कि सन्यासी की ड्यूटी क्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्ही जे अर्थ कर बुझीते न पार, वेदांत सूत्र समझ में आ रहे हैं लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन सब बादल के समान है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं। सार्वम भट्टाचार्य बोले कि अगर किसी को समझ में नहीं आती तो उसको जिज्ञासा करनी चाहिए, ये तरीका है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप प्रश्न भी नहीं पूछ रहे। तुम्ही शुनी शुनी रह मौन मात्र धरी, आप चुप करके बैठे हो, हृदय की आचे तो मार बुझीते ना पारी, आपके मन में क्या चल रहा है? महाप्रभु बोले कि मुझे सूत्र समझ में आ रहे हैं लेकिन तुम्हारा व्याख्या शुनी मन है व्याकुल हियरिंग योर एक्सप्लेनेशन सिंपली एजिटेटिंग माई माइंड, वॉट अ कॉम्प्लीमेंट नहीं कोई क्लास के बाद बोले प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा, श्लोक बहुत अच्छा था और आपके एक्सप्लेनेशन से बस मैं डिस्टर्ब हो गया। तो महाप्रभु इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेस्टाइजिंग। वेदांत सूत्र स्वच्छ स्पष्ट है, वेरी क्लियर, लेकिन आप डायरेक्ट मीनिंग नहीं बता रहे, डायरेक्ट मीनिंग समझाना चाहिए। तो इस तरह बहुत देर तक वार्तालाप चलता है। महाप्रभु उदाहरण देते हैं कॉन्शियल का, शंख जो डीटी वर्शिप में यूज होता है, शंख है वो एक जानवर की हड्डी है और वो अपवित्र माना जाता है, किसी मृत जानवर को स्पर्श करते हो तो स्नान करना होता है, लेकिन शंख को डीटी वर्शिप में यूज किया जाता है या गोबर को भी, क्योंकि वेद वाक्य है। तो वेद जो है उसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके कोई पर्पट्स की जरूरत नहीं है। इस तरह से बहुत देर तक दोनों में बातचीत चलती है और व्हाट इज दैट वर्स आत्माराम एनालाइज आत्मारामस्य मुनयो, ये श्लोक के ऊपर बहुत देर तक महाप्रभु एक्सप्लेनेशन देते हैं। और ये सब श्लोक सुनने के बाद में अंत में सार्वम भट्टाचार्य परिवर्तित हो जाते हैं, महाप्रभु उनको समझाते हैं कि शंकराचार्य ने जो एक्सप्लेनेशन दिए थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि उनको भगवान की आज्ञा थी मायावाद दर्शन का प्रचार करने के। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद में अंत में सार्वम भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति इतने विद्वता को प्रदर्शित कर रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके चरणों की शरण में गिर जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपना षडभुज रूप दिखाते हैं। शायद आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ मंदिर के पास में सार्वम भट्टाचार्य का घर है, जस्ट नियर श्वेत गंगा के तट के ऊपर पुराना सा घर है, कुछ भाग हैं, स्मॉल डीटीज आर देर, राधा राधा रसिक राज 5 4 5 DTs आर देर। इनफैक्ट वहाँ के पुजारी बताते हैं कि पहले उधर नीचे से एक सुरंग था, टनल जहाँ से अब डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर में जा सकते थे, क्योंकि सारंग भट्टाचार्य हेड प्रीस्ट थे वहाँ के। तो महाप्रभु वहीं पर उनको अपना षडभुज रूप दिखाते हैं, दो हाथ में मुरली, एक हाथ में कमंडल और दंड, और एक हाथ में धनुष और बाण, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु। अभी कई लोग हैं जो अपना नाम रामकृष्ण बोलते हैं लेकिन न धनुष बाण न मुरली कोई दिखाई नहीं पड़ता, अगर वो भगवान हैं तो उनको भगवान के रूप दिखाने चाहिए। कोई व्यक्ति कह सकता है मैं करोड़पति हूँ, तो बैलेंस कुछ नहीं है लेकिन मेरा नाम करोड़पति। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नरसिंह रूप दिखाया, राम कृष्ण और वराह रूप, अनेक रूप दिखाए, विश्व रूप। ये सेंटिमेंट नहीं है, कई बार बोलते हैं इस्कॉन डिवोटीज आपके लिए ठीक है, हम तो कृष्ण को स्वीकार करते हैं लेकिन गौरंग महाप्रभु को नहीं स्वीकार। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं आप कृष्ण का भी नाम लो, अगर गौर की शरण नहीं लेते तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लाखों जन्म हरे कृष्ण बोलते रहो लेकिन जब तक आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा को नहीं स्वीकार करते तब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। और सार्वभौम भट्टाचार्य जब ये स्वीकार करते हैं तो उनका पूरा हृदय परिवर्तित हो जाता है, और उस समय वो ये श्लोक की रचना करते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया। अभी षडभुज रूप चैतन्य भागवत ने बताया है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कुछ और बताया है। चैतन्य चरितामृत बताया गया है, टू शो हिम मर्सी लॉर्ड शोड हिम हिज 400 फॉर्म्स, चतुर्भुज रूप दिखाया, शंख चक्र गदा और पद्म। देन तेकाइला तारे आगे चतुर्भुज, पाछे श्याम वंशी मुख स्वाकीय स्वरूप, देन ही शोड हिज 200 फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म कृष्ण, मुरली धारण करते हुए और ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, और ये सब देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। और तब उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की, जिसमें से 2 श्लोक बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, एंड द अदर वन आई डोंट रिमेम्बर कि भक्ति योग जो काल के द्वारा नष्ट हो गया था उसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान गौरंग महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु बोले भट्टाचार्य को। एक्चुअली जब गोपीनाथ आचार्य भी वहाँ पर आए, तीनों मिल रहे थे, गोपीनाथ आचार्य बोले चैतन्य महाप्रभु से कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य का जीवन परिवर्तित कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, ये जगन्नाथ की कृपा है, क्योंकि आप जगन्नाथ के भक्त हो और सार्वभौम भट्टाचार्य आपके ब्रदर इन लॉ हैं, इसलिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बहुत सुंदर प्रेयर की, वो कहने लगे भगवान जगत निस्तारिला तुमी, आपने पूरे जगत का उद्धार किया वो कोई बड़ी बात नहीं है, अमा उद्धारिला तुमी यही आश्चर्य है। लेकिन मेरे जैसे ड्राई फिलोसोफर को, मेरे को जन्म से लॉजिक की आदत थी, लॉजिक या केक की तरह जिसमें कोई घी ऑयल कुछ नहीं है, सूखा हुआ केक है ना, मैं उसी को चबा रहा था, और अब मैं भक्ति के रस का आस्वादन कर रहा हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु में हूँ। ऐसे कहकर भगवान के चरणों में गिर पड़े, आपने मेरा परिवर्तन किया, दैट इज इंडीड वंडरफुल। आई हैड बिकम डल हेडेड ड्यू टू रीडिंग टू मेनी बुक्स ऑन लॉजिक, माई हार्ट हैड बिकम लाइक एन आयरन बार, बट यू हैव मेल्टेड मी एंड योर इन्फ्लुएंस इज वेरी गुड, आपने लोहे को पिघाल दिया। ये प्रेयर सुन के चैतन्य महाप्रभु अपने घर में गए, और फिर अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए, पुजारी ने उनको फूल माला दी और बहुत सारा प्रसाद दिया, और वो प्रसाद लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए। और भट्टाचार्य जस्ट उठ रहे थे, जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। भट्टाचार्य उठते ही बोले कृष्ण कृष्ण, सार्वभौम भट्टाचार्य रोज फ्रॉम बेड ही डिस्टिंक्टली चैंटेड कृष्ण कृष्ण, कृष्ण नाम सुनी प्रभुर आनंद बाड़ीला। महाप्रभु इतने खुश हुए, और भट्टाचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बाहर हैं, दौड़ते हुए गए, प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रसाद सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जस्ट उठे थे, उन्होंने मुँह नहीं धोया था, स्नान नहीं किया था, पूजा नहीं की थी, लेकिन वो प्रसाद लेकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत वो प्रसाद ले लिया, और वही 2 श्लोक कहने लगे। शुष्कम परियोषितम वापी, यह महाप्रसाद प्राप्त होता है उसका एक ही रूल है, तुरंत स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो दूर से आया हो या वो सूख गया हो, समय का और स्थान का विचार न करते हुए महाप्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंसर्निंग टाइम एंड प्लेस, पद्म पुराण बताया गया। और महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, महाप्रभु सारंगभट्टाचार्य को गले लगाने लगे और दोनों एक्सटेसी में मग्न हो गए, दोनों के आंखों से आंसू प्रवाह होने लगे और महाप्रभु कहने लगे, आज मैंने तीन जगत को जीत लिया, टुडे आई हैव कॉन्कर्ड द थ्री वर्ल्ड्स, टुडे आई हैव असेंडेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आज मैं भगवान के धाम में पहुंच गया, क्योंकि आज मैंने देखा कि सार्वम भट्टाचार्य को भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद में श्रद्धा पैदा होगी, आज आपने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया और अब कृष्ण जरूर आप पे दया करेंगे कि सब बंधन दूर हो जाएंगे और आपको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो भवसागर को आसानी से पार कर सकता है, और जो व्यक्ति जिसकी शारीरिक बुद्धि है वो सोचता है मैं शरीर हूँ, वो गिद्धों के लिए भोजन बन जाता है। उस दिन से चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर हमेशा ध्यान करते हुए सार्वम भट्टाचार्य भक्ति योग का अभ्यास करने लगे। और लास्ट पॉइंट आज के कथा का है, भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से एक दिन प्राइवेटली मिलते हैं अकेले स्थान पर और एक प्रश्न पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी आपको मालूम है लेकिन फिर भी, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैले मन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन एक्सिक्यूशन ऑफ डिवोशन, कौन सा बेस्ट है? प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन, द लॉर्ड रिप्लाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरा प्रवचन दिया एक श्लोक के ऊपर, हरे नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 नास्त्येव। और सार्वम भट्टाचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो गए भगवान के प्रवचन को सुनकर। और गोपीनाथ आचार्य ने सार्वम भट्टाचार्य को कहा, आपको याद है मैंने बोला था आपको आपको कृपा मिलेगी, what I foretold has now taken place. And Bhattacharya replied, because I am related to you, you are a devotee of Krishna, by your mercy the Lord has shown mercy to me. Mereko kripa isliye mili hai kyunki aapko kripa mili hai, you are a first class devotee, I am in the darkness of logical arguments. Tumhi mahabhagwat ami tark andha, logic bhi ek andhapana create karta hai, usme phasa hua tha, lekin bhagwan ne mere upar kripa ki hai aapke dwara. इस तरह सार्वम भट्टाचार्य जैसे हार्ड कोर लॉजिशियन भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से परम वैष्णव बन जाते हैं, और इसके बाद उनका नेचर इतना बदल जाता है कि भागवत का एक श्लोक होता है मुक्ति पदे, तत्यनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्मा कृतम विपाक अमृत भागवत विदधान नमस्ते जीवेति मुक्ति पद। पहले उनको आदत थी मुक्ति 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 मुक्ति, सोहम अहम ब्रह्मास्मि वही उनका महामंत्र था, लेकिन अब उनको इतनी घृणा होने लगी कि उन्होंने भागवत का श्लोक भी चेंज कर दिया, मुक्ति पदे को भक्ति पदे कर दिया। और महाप्रभु आए और उन्हें पूछा कि ये क्या है बोले मुझे मुक्ति पसंद नहीं है, इसलिए महाप्रभु ने बताया कि यहाँ पर मुक्ति का मतलब है मुक्ति अन्यथा स्वरूपेण अवस्थिता, टू बी सिचुएटेड इन वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, यही मुक्ति है, इसलिए आप मुक्ति रहने दो, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सार्वम भट्टाचार्य बोले ठीक है मैं चेंज नहीं करूंगा लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये। दिस वॉज द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक्सट्रीम। सार्वम भट्टाचार्य प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादी व्यक्ति भी परम वैष्णव बन गए, जगाई मदाई जैसे पापी भी वैष्णव बन गए, और रूप सनातन जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण पहले ही वैष्णव थे वो और श्रेष्ठ वैष्णव बन गए। सो ऑल एक्सट्रीम्स, रेड ब्लू इंडिगो वायलेट सब शेड्स के व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु कृपा से शुद्ध बन सकते हैं और सच्चे दिल से पुकारते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदिशान प्रभु एनी कमेंट्स? शिवास प्रभु लाइक टू से सम, आज अच्छा दिन है।